प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 22 मई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपसे स्पष्ट किया था कि अब हम 2 सप्ताह तक जो इंटरनेशनल रिलेशन का सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे, कैसे तैयारी की जानी चाहिए, क्या रणनीति हो और कुछ टॉपिक्स को लेकर के भी चर्चा की जाएगी। तो उसका आज दूसरा दिन है। कल के डेली ऑडियो लेक्चर में मैंने इसके वेटेज के बारे में चर्चा की थी ताकि आपके दिमाग में इसकी गंभीरता स्थापित हो जाए और आप इसके प्रति थोड़े से सिंसियर हो जाएं। मित्रों, अब मैं आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर में इसके सिलेबस को स्पष्ट करना चाह रहा हूं। हालांकि मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि सर, सिलेबस तो दिया हुआ है, लिखित में है और हम उसे पढ़ लेंगे, आप बल्कि किसी और पर बात कर लेते तो ज्यादा बेहतर था। ये मैं भी जानता हूं मित्रों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इस पर मुझे बात करनी ही चाहिए। वो इसलिए कि जब स्टूडेंट से व्यक्तिगत रूप से मेरी बात होती है तो मुझे बहुत संतोषजनक उत्तर सिलेबस के बारे में नहीं मिल पाता। और ये सिलेबस केवल इंटरनेशनल रिलेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, किसी भी सिलेबस के बारे में। या तो पूरी की पूरी किताब को सिलेबस मान बैठते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कोई किताब प्रेस्क्राइब कर दी कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन पर तुम इनकी किताब पढ़ लो, तो उनको लगता है कि ये पूरी की पूरी किताब ही हमारे सिलेबस में है, राइट? या फिर वो उसमें से जब छांटने लगते हैं तो उन्हें बहुत से टॉपिक ऐसे लगते हैं कि ये तो हमारे काम के नहीं है, ये तो हमारे सिलेबस से बाहर की चीज है। इसलिए उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि सिलेबस जो सिविल सर्विस का स्पेशली दिया गया है वो बहुत डिटेल्ड में नहीं है, डिटेल्ड में नहीं है, और यही इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए सिलेबस को स्पष्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अदरवाइज दूसरे आप चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को उठा करके देख लीजिए, या जब हम यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ रहे होते हैं तो पूरी की पूरी किताब सिलेबस के आधार पर बना दी जाती है, आप उसको पढ़िए और बात बन गई। सिलेबस भी जो दिया जाता है बहुत डिटेल में दे दिया जाता है, उसके बाहर कुछ आता भी नहीं है। लेकिन सिविल सर्विस ने जानबूझ कर मुझे लगता है कि जो अपना सिलेबस बनाया है उसमें अस्पष्टता रखी है, डिटेलिंग नहीं दी है। कुछ की डिटेलिंग दे दी है, जैसे कि जब आप जनरल स्टडीज के सेकेंड पेपर को देखेंगे, मेंस की ही मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें जो पॉलिटिकल साइंस के बारे में पूछ दिया गया है तो काफी डिटेल में दिया गया है। लेकिन याद रखिए कि डिटेल में दिए जाने के बावजूद उसमें सब कुछ नहीं है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो एक दिन आप एक काम कर लीजिए कि सिलेबस उठा करके देख, सिलेबस एक तरफ रख लीजिए और अनसॉल्व पेपर एक तरफ रख लीजिए और देखिए उसके क्वेश्चन को ढूंढिए अनसॉल्व पेपर में से एक क्वेश्चन उठाइए और उसे सिलेबस में ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो आपको डायरेक्ट तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन जब आप इनडायरेक्ट जोड़ना चाहेंगे कि यार ये जो क्वेश्चन आया है ये इसके अंदर कवर होता होगा, तब आप शायद उन दोनों का संबंध स्थापित कर पाए। और यही सिविल सर्विस के सिलेबस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और इसीलिए मुझे लगता है कि सिविल सर्विस के बारे में ये कहा जाता है, सामान्यतया कह दिया जाता है कि भैया इसमें तो कुछ भी पूछा जा सकता है, अंडर द सन, जो कुछ भी सूरज या आसमान के नीचे हो रहा है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। मित्रों, अगर सच में यही होता तो यूपीएससी एक लाइन का यही सिलेबस डाल देता ना कि एनीथिंग कुड बी आस्क्ड, कुछ भी पूछा जा सकता है। नहीं दिया है ना उसने आपको बकायदे मर्यादित एक सिलेबस प्रोवाइड किया है। अब उसमें उन्होंने डिटेल जरूर नहीं दी और उस डिटेल की कमी को हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं कि कुछ भी पूछा जा सकता है, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ी सी ज्यादती कर रहे हैं यूपीएससी के साथ में और अपनी भी थोड़ी सी नादानी का प्रमाण दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, उस अनडिफाइंड सिलेबस जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी डेफिनेशन है, वो भी डिफाइंड है। तो इसी बात को ध्यान में रख करके मैं यहां आपके सामने इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस का खुलासा कर रहा हूं, थोड़ी सी स्पष्टता लाना चाह रहा हूं। और उस स्पष्टता को मैं इस दृष्टि से लाना चाह रहा हूं कि इसके केंद्र में क्या है, क्योंकि जो इंटरनेशनल रिलेशन है देखिए अपने आप में एक बहुत व्यापक विषय है, अनलिमिटेड है। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब पूरी दुनिया के संबंध, दुनिया में 200 देश लगभग, और उन सबके संबंध और आपस में संबंध कर दीजिए तो पता नहीं कितने संबंध हो जाएंगे। आप कितने कितने को पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए, अगर जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं तो वर्ल्ड हिस्ट्री के सिलेबस में भी उन्होंने कहीं ना कहीं डिफाइन तो कर दिया है, डिफाइन किया है कि मॉडर्न हिस्ट्री और फिर कब से है वो भी उन्होंने दिया है, बकायदे मिड ऑफ द 18th सेंचुरी दे दिया है उन्होंने वहां से लेकर के। फिर उन्होंने कुछ अदृश्य लकीरें दे दी हैं, उन लकीरों को आप पढ़ लीजिए, बिटवीन द लाइन्स जिसे मैं कहता हूं, आपको बिटवीन द लाइन्स को पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस में भी है। तो मित्रों, मैं इंटरनेशनल सिलेबस के बारे में आपको कुछ चीजें पहले मैं बता दूं, राइट। देखिए, इंटरनेशनल सिलेबस के लिए, सिलेबस में उन्होंने आपके लिए, हम सबके लिए बेसिकली चार पॉइंट दिए हुए हैं, फोर पॉइंट्स दिए हैं। मैं पहले उन फोर पॉइंट्स को आपके सामने रख रहा हूं, फिर हम उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बहुत क्लियर किया है। एक तो आप अगर आप इस पेपर का, जो जनरल स्टडीज का सेकेंड पेपर है, उसके टाइटल को देखिए, तो उस टाइटल में ही ये सबसे लंबा टाइटल है, मतलब सबसे लंबे टाइटल्स में से एक है, कह लीजिए सबसे लंबा तो है नहीं कहना चाहिए। आखिरी में बाकायदे इंटरनेशनल रिलेशंस मेंशन किया हुआ है, गवर्नेंस, फिर है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर है पॉलिटी, फिर है सोशल जस्टिस, और इसके बाद दिया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस, मतलब स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और इस इंटरनेशनल रिलेशंस वाला जो भाग है उसकी शुरुआत हो जाती है आपके 17वें पॉइंट से। इसमें टोटल 20 पॉइंट दिए हुए हैं, 17वें पॉइंट से आपके इंटरनेशनल रिलेशन की शुरुआत हो जाती है, यानी कि टोटल चार पॉइंट है 17 से लेकर 20 तक। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड डैश रिलेशन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि मान करके चले कि इसमें एक ही पॉइंट है, लेकिन तीन चौथाई सिलेबस इसमें कवर हो गया है, तीन चौथाई सिलेबस कवर हो गया है। और मैं जो तीन चौथाई सिलेबस कवर हो गया है, ये जो बात कह रहा हूं वो अनसॉल्व्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं, अनसॉल्व्ड पेपर को ध्यान में रखते हुए, राइट। इसमें साफ तौर पर कहा गया कि आपको भारत के बारे में पढ़ना है और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं उनके संबंधों के बारे में पढ़ना है। मतलब दुनिया में इतने देश हैं नो डाउट, तो आपको सभी देशों के बारे में नहीं पढ़ना है कि भारत के उनसे क्या संबंध है। आगे जाकर के उसे और उन्होंने स्पष्ट किया है, जो सबसे ज्यादा जो आपको प्राथमिकता देनी है वो केवल अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को देनी है। अब पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, खासकर उनमें भी आपको ये जानना होगा कि इसमें प्रोमिनेंट कौन कौन से हैं। अब आप देखिए, पड़ोसी देश में हमारे बहुत से आ जाते हैं, इधर आप देखेंगे तो फिर अफगानिस्तान, ईरान, फिर इधर पाकिस्तान से शुरू होकर के फिर उधर हम चले तो फिर हमारा चाइना आ जाता है, चाइना से थोड़े आगे चले जाइए जापान, तो जापान के साथ तो कोई बहुत ज्यादा उस तरह से बात होती नहीं है, तो फिर आप इधर आ जाएंगे तो इधर फिर पड़ोसी देशों की बिल्कुल एक लंबी श्रृंखला है ना, बांग्लादेश, फिर भूटान, फिर म्यांमार, और फिर देखिए आप ढेर सारे पड़ोसी देश है, मालदीव है, श्रीलंका है, पूरा साउथ ईस्ट एशिया है, ईस्ट एशिया है, ये ढेर सारे कंट्रीज आ जाते हैं। लेकिन इसमें भी याद रखिए कि जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं या ईस्ट एशिया की बात करते हैं तो ये एक संगठन के रूप में हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि साउथ ईस्ट एशिया संगठन में अगर 10 देश हैं तो उन 10 देशों के बारे में हमें अलग अलग जानना है, नॉट एट ऑल। हाँ, उसमें से अगर किसी देश के साथ कोई विशेष घटना भारतीय संदर्भ में घटित होती है तो उस पर आप थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर दीजिए, बस दैट्स ऑल। अदरवाइज उन्हें आपको संगठित रूप में देखना है कि भारत के जो साउथ ईस्ट एशिया है उनके साथ कैसे संबंध है, जो आसियान कंट्रीज है उनके साथ कैसे संबंध है, बस इससे ही आपका काम चल जाएगा। अदरवाइज जो ज्यादा हमारे बिल्कुल एक सीमा पर ही हैं और जिनके साथ लगातार बहुत ज्यादा इंटरेक्शन हो रहा है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भले ही वो छोटा सा देश क्यों ना हो, बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भले ही वो एकदम छोटा सा क्यों ना हो, मालदीव जिसकी आबादी हार्डली 2 लाख है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा बिल्कुल पड़ोसी देश है। तो ये जो छोटे छोटे राष्ट्र हैं जो हमारे बिल्कुल पड़ोस में हैं और कई दृष्टि से हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात है सामरिक दृष्टि, यानी युद्धक रणनीति, या इसे इस रूप में कह लीजिए कि शक्ति संतुलन, इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और नो डाउट कि जब हम इनमें भी छांटते हैं तो चीन और पाकिस्तान वो टॉप पर आ जाते हैं। देखिए जो तैयारी की रणनीति होती है वो लेयर्स के हिसाब से बनती है कि सबसे टॉप पर सब मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फिर इंपॉर्टेंट कौन से हैं, फिर लेस इंपॉर्टेंट कौन से हैं और कौन से फिर सामान्य है बिल्कुल। तो इस तरह से हमें कैटेगरी बनानी पड़ती है। तो चीन पाकिस्तान हमारे टॉप प्रायोरिटी पर आ जाते हैं, नो डाउट कि फिर अफगानिस्तान भी हो जाता है। घटना घटित होती है तो बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, अगर कुछ उस समय विशेष कुछ हो गया हो। श्रीलंका किसी भी मायने में कम नहीं है। तो इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस ये आपका सबसे बड़ा हिस्सा है आपके सिलेबस का, ये आपको याद रखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि 3/4। इसके बाद आप देखिए कि सेकेंड प्वाइंट क्या है। सेकेंड प्वाइंट है बायलेटरल यानी कि द्विपक्षीय, रीजनल यानी कि क्षेत्रीय एंड ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट। मतलब आपको देखना है कि जो द्विपक्षीय समझौते हो रहे हैं, जो क्षेत्रों के बीच में समझौते हो रहे हैं और जो विश्व के संगठनों के बीच में समझौते हो रहे हैं, चाहे तो संगठन बन रहे हों चाहे समझौते हो रहे हों, आपको उनके बारे में जानना है। लेकिन यहां आपकी सुविधा के लिए उसने क्या कर दिया, सिलेबस में देखिए दिया हुआ है कि एंड एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड ऑब्लिक आर अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट्स। मतलब दुनिया में जो कुछ हो रहा है आपको उन सब कुछ के बारे में नहीं जानना है, केवल उनके बारे में जानना है कि ऐसा कोई संगठन बन रहा है, ऐसी कोई संधि हो रही है, चाहे वो क्षेत्रीय स्तर की हो या द्विपक्षीय हो या वैश्विक स्तर की हो, जिसमें भारत इन्वॉल्व है, या तो भारत इन्वॉल्व है या उसके कारण भारत पर प्रभाव पड़ेगा, बस खत्म हो गई बात। यानी कि अगर अमेरिका और रशिया कुछ कर रहे हैं और उनका भारत से कोई संबंध नहीं है, भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो करते रहे, कोई हर्जा नहीं है। अगर अमेरिका मेक्सिको के बीच में दीवाल बनाना चाह रहा है तो दीवाल बनाए, उससे भारत का कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, खास और बेखास क्या, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो करते रहे। तो यहां भी आप देखें कि इंडिया है जो आपका जो ये इंटरनेशनल रिलेशन का पेपर है उसकी सबसे खूबसूरती ये है, सबसे अच्छी लिमिटेशन ये है आपकी सुविधा के लिए कि भारत उसके केंद्र में है। मतलब वही घटनाएं हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं जिनके केंद्र में हम हैं, या तो जो जिसमें हम इन्वॉल्व हैं या जिनका हम पर प्रभाव पड़ेगा। हम इन्वॉल्व तो नहीं है लेकिन हम पर प्रभाव पड़ेगा तो हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे अब आप देखें कि ईरान पर प्रतिबंध लगाने जा रहा है अमेरिका, उसने अपनी डील आपको मालूम है न्यूक्लियर डील से अमेरिका अलग हो गया, अब ईरान पर वो प्रतिबंध लगाएगा, तो ठीक है ईरान और अमेरिका का मामला है। लेकिन चूंकि इसका भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ना है तब ये भारत के लिए जरूरी हो गया, भले वो मामला ईरान और अमेरिका ही क्यों ना हो। बस आपको इस उदाहरण से मुझे लगता है कि चीजें अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्री ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इंडियन डायस्पोरा। ये सच पूछे तो सेकेंड पॉइंट अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया उसी का एक्सटेंशन है। उसमें तो एग्रीमेंट वगैरह की बात कही है, संगठन के बनने की बात कही है, इसमें उन्होंने दे दिया है कि नीतियां और राजनीति, यानी कि विश्व के देश चाहे वो डेवलपिंग कंट्री के हों, विकासशील देशों के हों या वो विकसित देशों के हों, अगर वो कोई ऐसी नीति बनाते हैं या इस तरह की राजनीति करते हैं जिससे या तो भारत पर प्रभाव पड़े या आप प्रवासी भारतीयों पर प्रभाव पड़े। यहां पर देखिए एक चीज उन्होंने जोड़ दी, अप्रवासी भारतीय इंडियन डायस्पोरा, वे भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं उन पर अगर प्रभाव पड़ता है तो हमें इसे भी देखना होगा, इसे भी जानना होगा। जैसे आप देखिए कि अभी अमेरिका H-1B वीजा की बात करता है जिसमें कि है कि साहब नौकरियां नहीं दी जाएंगी या कुछ लोगों को निकाला जाएगा, अब उसमें भारतीयों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, जो हमारे जो भारतीय अमेरिका में रह रहे उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस सरकार इस तरह की नीतियां लाती रहती है दुनिया के जो देश है, तो उन पर भी हमें ध्यान देना होगा, उनको भी ध्यान में रखना होगा। तो ऐसी घटनाओं को भी हमें अपने सिलेबस में लेकर चलना होगा। और इसके बाद मित्रों जो लास्ट पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एजेंसीज एंड फोरा, मतलब फोरम मंच, जो महत्वपूर्ण, देखिए उन्होंने शब्द दे दिया महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, विश्व स्तर के संस्थान एजेंसीज और फोरम, और इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है, उनका स्ट्रक्चर और उनका मैंडेट यानी कि उनका उद्देश्य। अब आप देखिए कि जो उद्देश्य और जो स्ट्रक्चर की बात कही है तो इस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, आप अनसॉल्व्ड पेपर देखिए, सीधे सीधे स्ट्रक्चर और उद्देश्य पर तो पूछे ही गए हैं, और साथ ही साथ इनको आपको करंट अफेयर्स से जोड़कर पढ़ना है, अभी उनके बारे में क्या चल रहा है। कुल मिलाकर के मित्रों ये आपका सिलेबस है। मुझे लगता है कि इतने डिस्कशन के बाद डेफिनेटली सिलेबस के बारे में आपकी दृष्टि कुछ न कुछ तो स्पष्ट हुई ही होगी। अब अगर हम इस सिलेबस को दो भागों में सीधे सीधे बांट दें तो एक भाग हो जाता है इंडिया का, इंटरनेशनल रिलेशन विथ इंडिया या इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आप इसको चाहे तो बदल सकते हैं, और जो सेकेंड पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजेशन का, यूएनओ के बारे में आपको जानना चाहिए, यूएनडीपी के बारे में जानना चाहिए, इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, जो महत्वपूर्ण संगठन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना चाहिए, इन सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो इस तरह से दो भाग इसके हो जाते हैं, और बट नेचुरली कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब जानने की कोशिश करेंगे तो उसमें इंडिया का क्या रोल है उस पर हम थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे। तो मित्रों ये थोड़ी सी जानकारी थी सिलेबस के बारे में, और आप, मैं चाहूंगा कि ये सिलेबस वाला जो एपिसोड है ये आपके पास रहना चाहिए, और बीच बीच में जब आप इसे सुनेंगे, जैसे आपने पढ़ना शुरू कर दिया ठीक है, फिर जब आप इसे सुनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दृष्टि का विस्तार होता जा रहा है, आप और ज्यादा चीजों को स्पष्ट रूप से समझ पा रहे हैं, वो क्षमता आपको महसूस होगी। राइट फ्रेंड्स, तो अब इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को मित्रों में यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।